सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए नित्य स्वाध्याय प्रवचन में प्रश्नोत्तरी का 5 श्लोक का सब साथ साथ पाठ करते हैं। अपार संसार समुद्र मध्य समज्जतो मे शरणं किमस्ति गुरो कृपालो कृपया वदैतद् विश्वेश पादाम्बुज दीर्घनौका बद्धो हि को यो विषयानुरागी का वा विमुक्तिर्विषये विरक्तिः को वास्ति घोरो नरक स्वदेह तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति संसार हृतक श्रुतिजात्म बोध को मोक्ष हेतु कथित सैव किमेकं नरकस्य नारी का स्वर्गदा प्राणभृताम् अहिंसा सेते सुखं कस्तु समाधिनिष्ठो जागर्ति को वा सदसद्विवेकी किसत्रव सन्ति निजेन्द्रियाणि तान्येव मित्राणि जितानि यानि को वा दरिद्रो हि विशाल तृष्ण श्रीमाच को यस्य समस्ततोषः जीवन्मिता कस्तु निरुद्यमोय किं वा मितं स्यात् सुखदा निराशा। आइए दूसरे श्लोक पर विचार कर रहे थे। प्रत्येक प्राणी बंधन से छुटकारा चाहता है। इस सवाल का जवाब जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान दे रहे हैं, जो साक्षात शंकर भगवान के ज्ञान अवतार शंकराचार्य जी वही बोल रहे हैं। बद्धो हि कोयो विषयानुरागी, जिसका चित्त हमेशा संसार का चिंतन करता, जिस चीज का बार बार चिंतन करते हैं उस चीज में स्वाभाविक अनुराग हो जाता। गीता में भगवान ने बताया, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते कामो कामात् क्रोधाभिजायते। सबसे पहले किसी चीज का बार बार चिंतन, इसी को ध्यान करते हैं, उससे उस वस्तु में आसक्ति अनुराग हो जाती। तो विषय में अनुराग ही बंधन का कारण है। आप चाहते हैं कि हम बंधन से मुक्त हों, तो आपको विषय चिंतन पहले छोड़ना पड़ेगा। विषय नहीं छोड़ना, विषय का चिंतन। हम लोग क्या करते हैं ना, बीज के शब्दों को जरा खा जाते, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि बोलते गौलत ध्वज विषभद ध्वज बोलते ना, तो गौलत ध्वज का अर्थ होता है जिसके ध्वजा पताका का चिन्ह गरुड़ पर अंकित है। मतलब जिसके पताके पर गरुड़ महाराज अंकित हो, उसको गौलत ध्वज बोलते हैं। विषभद ध्वज मतलब विषभ बोलते नंदीश्वर। जिसके ध्वजा मतलब पताके पर नंदीश्वर का, वृषभ का, बैल का चित्र अंकित हो, उसको वृषभ ध्वज, ऐसे कपि ध्वज बोलते। कपि का चिन्ह जिस ध्वजा पर है उसको कपि ध्वजा। जिस प्रकार हमारे देश का तिरंगा पहचान है, एक सिंबल है, ऐसे ही जब आप उपासना में उतरते हैं तो उन देवताओं का सबसे पहले सिंबल प्राप्त होता है गौलत ध्वज, विषभ ध्वज, कपि ध्वज। इसके बाद आप आगे जब बढ़ते हैं तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो विषय में अनुराग नहीं करना। अनुराग त्यागने का हेतु क्या है कि सबसे पहले विषय का चिंतन छोड़े। विषय नहीं छोड़ना, विषय का चिंतन छोड़ना है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कहीं न कहीं समाज में रहना ही पड़ेगा। समाज में रहेगा तो विषयों के साथ बर्ताव भी करना पड़ेगा। और बर्ताव कैसे करना जनक महाराज की तरह। संसार में रहकर भी जीवन मुक्ति के परम आनंद को हम प्राप्त कर सकते, इस बात को बार बार वेदव्यास जी ने अपने लाडले पुत्र सुखदेव जी को समझाया। सुखदेव जी ने कहा, पिताश्री सब बात तो समझ में आती है, पर संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त हम कैसे रह सकते। तब वेदव्यास ने कहा कि आप जाओ जनक महाराज के पास, वे आपको उपदेश देंगे। जब जनक महाराज के पास श्री सुखदेव जी महाराज आते हैं तो क्या देखते हैं, जनक महाराज अपनी प्रिय धर्मपत्नी के साथ विश्राम कर रहे थे, दूर दरवाजे पर ही खड़े हो गए। निद्रा खोली, अंदर आए, नमस्कार किए। जनक महाराज ने पूछा, महाराज आप आगमन का कारण क्या, सारी बात बता दी। बोले, अच्छी बात, आप आतिथ्य भवन में विश्राम करो, उचित समय पर आपको इसका मैं उत्तर दूंगा। विश्राम करने लगे। दूसरे दिन जनक महाराज ने कहा कि ऐसा है कि आप जरा बहुत दिन के बाद आए, घूम लो राजधानी कैसा। एक आदमी को उनके पीछे लगा दिया और एक आगे, दो आदमी, एक बता रहा और एक पीछे। पीछे वाले आदमी के हाथ में तलवार थी और सुखदेव जी महाराज के हाथ में दीपक जलता हुआ दे दिया। कहा कि दीपक बुझा तो धड़ से गर्दन अलग हो जाएगा। जो आगे आदमी चल रहा था वो बता रहा कि देखो ये इतना सुंदर भवन है, ऐसी इसकी शोभा है, सारा खूब वर्णन करते जा रहा। चार घंटे में अच्छी तरह से पूरा राजमहल घुमा दिया। इसके बाद आए तो जनक महाराज के साथ भोजन जीवने लगे। वैसी कारीगरी थी कि मानो अब गिरा तब गिरा पहाड़। अब भोजन कर रहे, ऊपर देखते जा रहे, कहीं गिरे तो नहीं, तो भगूं, जैसे भूकंप आता ना तो आप तैयार रहते हैं। अब बेचारे जीम तो लिए पर कोई स्वाद का भान नहीं। सायंकालीन सत्र में जनक महाराज के साथ जब बैठे श्री सुखदेव जी महाराज, तो पूछा कि महाराज बताओ, इस संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त परम आनंद का अनुभव कैसे हो सकता। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हमारे समझ में तो असंभव है, क्योंकि संसार में रहना और जीवन मुक्त दोनों विरोधी बातें हैं। जनक महाराज ने कहा, वो तो बात अच्छी है, इसकी चर्चा करेंगे विस्तार से, बड़ा है, परंतु ये बताओ कि आपको हमारा ये महल भवन कैसा लगा, भोजन व्यंजन कैसा था। हाथ जोड़े बोले, महाराज कुछ भी पता नहीं चला। बोले, क्यों, आप देख नहीं रहे थे। बोले, पूरा देख रहा था पर पूरा मेरा ध्यान दीपक पर था। दीपक बुझने न पाए, बुझेगा तो सर से मस्तक अलग हो जाएगा। जनक महाराज ने कहा, अच्छी बात, ये बताओ भोजन कैसा लगा, खीर कैसा था, तस्मई, पूड़ी, हलवा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला। बोले, कुछ पता नहीं। जनक महाराज ने पूछा, तो भोजन आपने इसका मतलब नहीं किया। बोले, किया तो मैंने खूब भर पेट, परंतु मेरा ख्याल था ऊपर कहीं पहाड़ न गिर जाए सर पर, तो तैयार था भागने के लिए। जनक महाराज ने कहा, बस यही उत्तर, जिस प्रकार आप आंख से देख रहे, पैर से चल रहे, परंतु सारा चिंतन चल रहा दीपक का, कहीं बुझने न पाए, नहीं तो दंड मिलेगा। आंख से देख रहे, हाथ से उठा रहे, जीभ से भोजन चख रहे, पर ध्यान कहां, कहीं पहाड़ न गिर जाए। ऐसे मैं भी संसार का सारा कारोबार करता हुआ भी जो हमारा चित्त है वह अपने स्वरूप के चिंतन में डूबा रहता। तो विषयों का ध्यान करने से अनुराग होगा, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। ये ध्यान हमारे चित्त का विषय है। व्याकरण का ध्येय चिंतायाम धातु है, उससे ध्यान बनता है। ध्येय चिंतायाम, ध्यान का मतलब कि आंख बंद कर लेना नहीं, स्वाभाविक आंखें बंद हो जाती। जिस प्रकार बगुला अपने आहार मछली का चिंतन करते करते इतना डूब जाता है कि आंखें बंद हो जाती, बिल्कुल लकड़ी की तरह खड़ा हो जाता, ऐसे ही हम परमात्मा का इतना चिंतन करें कि सब विस्मित हो जाए। तो विषय के ध्यान से अनुराग होगा, अनुराग से बंधन। यहां दो जीव की चर्चा चल रही, बद्ध जीव कौन और मुक्त कौन। तो हमें रहना है संसार में, आपको विषय को छोड़ना नहीं, परंतु विषय का चिंतन भी नहीं करना। आप बार बार सुनते हैं ना शास्त्र में, लोकेशणा पुत्रेशणा वित्तेशणा से वित्थाय, छोड़कर तब जाकर आत्मा का चिंतन करना चाहिए। ऐसणा त्रय त्यागो ही संन्यास, ये तीन ऐसणा है। तो हमें विषय ने ऐसणा को छोड़ना, ऐसणा बोलते ईशु इच्छायाम, धातु से ऐसणा बनता, ईशु इच्छायाम धातु इच्छार्थ में है। ऐसणा बोलते इच्छा को, चाहत को। पुत्रेषणा कार्ते पुत्र की ऐसणा को त्यागना, पुत्र और त्याग के बीच में ऐसणा शब्द है। ऐसे वित्तेषणा का त्याग, वित्त और त्याग के बीच में ऐसणा शब्द है। तीसरा है लोकेषणा, लोक और त्याग के बीच में ऐसणा शब्द है। तो आप लोक वित्त पुत्र का त्याग नहीं, बल्कि इनके ऐसणा का, मतलब चाहत। सारी बीमारी की जड़ है चाह। ये चाह क्या पता ना आपको, चाह के विषय में महापुरुष लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने बहुत बड़ा संसार का सृजन किया। जैसे आप संसार बनाते, बड़ा मकान दुकान फैक्ट्री, इसके बाद आप बैठकर विचार करते कि अब आनंद आना चाहिए। इतने में कभी बहू का झगड़ा, कभी बेटे का, कभी नाती का, कभी पोते का। आप सोचते हैं कि बुढ़ापे में ये जो है ना हमारी सेवा करेंगे, परंतु पुत्र पौत्र समर्थ होने के बाद आपसे दूर देश विदेश में कारोबार में लग जाते आप अकेले के अकेले। यही अवस्था ब्रह्मा जी की हुई। ब्रह्मा जिसको बनाते वह नमस्कार करके अपने लोक को चला जाता, देवताओं को बनाया, देवता नमस्कार करके परिक्रमा करके स्वर्ग चले गए। दैत्यों का सर्जन किया, दैत्य भी परिक्रमा करके पाताल सिधारे। मनुष्य लोग अपने मर्त लोक में, पृथ्वी लोक पर। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हो गए कि देखो मन इतना विस्तार से परिश्रम से। उपनिषद में एक सूत्र आता है स तपो तप्यत, तब क्या है, यस्य ज्ञानमयम् तपः, ज्ञान में तप किया, तपस्या से संसार का सृजन किया। ब्रह्मा जी बैठे बैठे जरा बहुत चिंतित उदास हो गए। जब आदमी बहुत चिंतित होता है तो मुख से आह निकलता है, आह ये क्या जो है हम लफड़े में पड़ गए प्रपंच में। जैसे आ बोले वैसे सामने एक स्त्री खड़ी हो गई, ब्रह्मा जी के मुख से आ निकला, स्त्री खड़ी। ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, बोली ब्रह्मन मुझे क्या आज्ञा। ब्रह्मा ने कहा भाई तेरी जहां मर्जी वहां तू अपना पधारो। आ गई स्वर्ग लोक, देवताओं ने कहा देखो यहां पर तो सुख ही सुख है, यहां आ की आवश्यकता नहीं, तुम जाओ। बेचारी पाताल गई, दैत्यों ने कहा जब देवता तुम्हें जगह नहीं दिए तो हम भी जगह देने वाले नहीं, तुम जाओ जहां से आई। बेचारी ठोकर खाती खाती मर्त लोक आई, मनुष्यों ने कहा भाई देखो हम तो जैसा देवता करते वैसा करते, से हमारे पास भी जगह नहीं। बेचारी घूम फिर कर ब्रह्मा जी के पास आई, लगी रोने, बोले ब्रह्मन मुझे कोई स्वीकार करता ही नहीं, सब ठुकरा रहे। ब्रह्मा ने कहा कोई बात नहीं इधर आओ, बुलाया, ऐसा श्रृंगार कर दिया, ऊपर च लगा दिया, च आ के आगे च लगा दो तो क्या बन गया, चाह। अब कब जाओ, जैसे स्वर्ग गई देवताओं ने कहा बस यही महारानी विराजमान हो जाओ। दैत्यों ने कहा बस सारा पाताल लोक आपका ही है, हम आपके दास। मनुष्यों ने कहा कि बस हमारे हृदय में बैठ जाओ, और नई झगड़ा खड़ी हो गई। तो ब्रह्मा जी ने चाह को यह सामर्थ्य दिया कि तू सबके मन में अमूर्त रूप से विराजमान हो जा, वही चाह। तो देखो आ के पहले क्या चाह है ना, वो चाह तो मुकुट है एक, समझो कि मुखौटा है। तो चाह के पीछे छुपा हुआ आ है, आ मतलब दुख। तो जब आप विषय की चाह करते, चाह मतलब ऐसा हिंदी में उसको ऐसा बोलते, जब आप विषय की मतलब पुत्र की वित्त की लोक मतलब सम्मान की ऐसा चाह करते हैं तो तुरंत आपके साथ आह आ जाती है, फिर कहते हाय क्या हुआ। इसलिए आचार्य कह रहे भाई विषय के चिंतन को छोड़ो, चिंतन करना है तो परमात्मा का करना चाहिए। बद्धो हि को यो विषयानुरागी कावा विमुक्तिर विषये विरक्ति। अब विमुक्ति क्या है ये तो बद्ध की परिभाषा बता दी, पर आप बंधन से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कहा कि विषये विरक्ति, विषय से विरक्ति होने का नाम है विमुक्ति। विरक्ति मतलब राग का भाव, जिस चीज में हमारी प्रीति होती है वहां पर राग होता है, उसका बार बार चिंतन चलता है। जब आप विषय के सच्चाई को ठीक से समझ लें स्वतः विरक्ति हो जाती है। आपने शतक त्रय पढ़ी होगी, भर्तृहरि की जो शतक त्रय है, वैराग्य शतक, नीति शतक और क्या एक है श्रृंगार शतक, तीन है। तो नीति शतक में भर्तृ महाराज लिखते हैं स्वानुभव अपने अनुभव को, याम चिंतयामि सततम सामयी विरक्ता। भर्तृहरि महाराज कहते हैं जिसका मैं बार बार चिंतन करता हूं अपनी प्रिय पत्नी का, सामयी विरक्ति, वह मुझसे बिल्कुल विरक्त है, उदास है, ऊपर से प्रेम का स्वांग करती है। और हमारी पत्नी जिस पर आसक्त है, दीवान पर आसक्त थी, वह उससे विरक्त, वह जो दीवान था वह एक वेश्या से प्रेम करता था, और दीवान जिस पर आसक्त, जिस वेश्या पर, वह उससे विरक्त, वह राजा से प्रेम करती, राजा को चाहती। एक दिन एक संत जी अमर फल लाए, कहे महाराज बड़ा सुंदर अमर फल, आप इसको जो है ना प्रसाद रूप से ग्रहण कर लो, सच्चाई का ज्ञान हो जाएगा, आप कहीं मरोगे नहीं, बिल्कुल जवान रहोगे, जवानी बनी रहेगी। राजा ने विचार किया, इसको खाकर मैं जवान रहा भी तो हमारी प्राण प्यारी पत्नी तो बूढ़ी हो जाएगी, चलो उसको दे देते हैं। मनुष्य का स्वभाव होता है जिससे प्रेम करता उसको अच्छी चीज देता है, पत्नी को दे दिया। पत्नी ने विचार किया कि इसको मैं खाऊंगी तो अमर हो जाऊंगी, पर हमारा जो प्रियतम है दीवान ये बूढ़े हो जाएगा तो किस काम का, उसको दे दिया। दीवान ने सोचा कि मैं खा लिया तो मैं तो जवान, पर हमारी प्राण प्यारी जो प्रेयसी है वह बूढ़ी हो जाएगी, इसलिए उसको दे तो जवान रहेगी, उसको दे दिया। वेश्या ने विचार किया, इस अमर फल को खाने के बाद मैं जवान रहूंगी तो और नित्य पाप ताप होते रहेंगे, इसलिए राजा बड़ी धर्मात्मा न्याय प्रिय है, यह फल उनको देती हूं, अच्छा शासन चलेगा। घूम फिर कर फल राजा के हाथ में आ गया, राजा ने पहचान लिया वही फल, जैसे इसको उन्होंने ग्रहण किया सारी घटना सामने आ गई। जैसे सच्चाई का बोध हुआ तत्काल राजा को वैराग्य हो गया, विरक्ति हो गई, सब राजपाट छोड़ दिए, जंगल में चले गए। बोले अहो जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं वह तो मुझसे विरक्त है, इसी का नाम संसार। तो आपको विरक्ति चाहिए तो संसार की सच्चाई को ठीक से समझना पड़ेगा। आचार्य शंकर ने भाष्य में एक उदाहरण दिया है विरक्ति का, बड़ा सुंदर। एक भूखा आदमी, बहुत भूखा है, उसके सामने 56 प्रकार व्यंजन आ गए, भोजन की थाली आ गई। जैसे ही वह भोजन करने हाथ बढ़ाया वैसे दौड़कर उसका बेटा आया, कान में बोला पापा खाना नहीं, इसमें जहर डाल रखा है। तुरंत उससे विरक्त हो जाता, बोला और दो दिन भूखा रह लूंगा पर खाऊंगा तो मर जाऊंगा, बेकार है, तुरंत भोजन को छोड़ देता, भोजन से विरक्त हो जाता। क्योंकि उससे क्या मालूम पड़ा, इसमें जहर है, विष है, ऐसा ज्ञान होते ही विरक्त हो जाता। ऐसे ही हमें यह ज्ञान हो जाए कि विषयम विषवत, ये विषय कैसे विष के समान है, ऐसा ज्ञान होने के बाद हमारा चित्त उससे विरक्त हो जाएगा। जब चित्त विरक्त हो जाएगा तो आप चित्त से परमात्मा का चिंतन करने लगेंगे। तो कावा विमुक्ति विषये विरक्ति, विरक्ति होना बहुत आवश्यक। अब विरक्ति का मूल बीज है विषयेषु दोष दर्शनम, विषय का बार बार दोष दर्शन करना, बाहर का नहीं अपना, अपना मतलब कि शरीर हमारा कैसा पंचभूत का बना, इसमें हाड़ मांस चाम का पुतला है, मल मूत्र का भंडार है, ऐसा चिंतन करना। ये मंदिराम कैसा है तो किसी की बात नहीं मानता, बार बार शरीर का इंद्रियों का जब विचार करेंगे कहते शौचात स्वांग जुगुप्सा परैर असंसर्ग। जब आप बहुत शुद्धिकरण करते हैं तो अपने आप आपको अपने शरीर से भी विरक्ति हो जाती है कि शरीर में कुछ भी नहीं है, दिन रात इसी की सेवा करते रहो, अंत में कुछ भी नहीं। तो जब संसार से विरक्ति हो जाए समझना कि हम मुक्ति के रास्ते पर चल पड़े। विमुक्ति की परिभाषा आपने खूब सुनी, वेदांत का मोक्ष है अशेष विशेष, दुखों का ध्वंस, परमानंद की प्राप्ति का ना मोक्ष, और 18 पुराण का जिसको बोलते पौराणिक, वह मोक्ष क्या है मालूम है? 4 प्रकार मोक्ष है, सालोक्य, सायुज्य, साष्टित्व, सारूप्य। सबसे पहले होता है सालोक्य, भगवान के लोक में निवास। इसके बाद सारूप्य, भगवान के समान स्वरूप प्राप्त करना। तीसरा है सायुज्य, भगवान का सेवक परिकर, जय विजय के समान दास दासी बन जाना। और चौथा साष्टित्व, मतलब भगवान के समान ऐश्वर्य। और पांचवी मुक्ति जो वेदांत प्रतिपाद्य है, जिसे बोलते हैं रीते ज्ञानात्मा मुक्ति, बहुत प्रसिद्ध श्रुति है, रीते ज्ञानात् न मुक्ति। ज्ञानाधयितु कैवल्यम, ज्ञान से ही कैवल्य मिलता है। कौन सा ज्ञान? आत्मा अनात्मा का जो विवेचन है, इस ज्ञान से कैवल्य की प्राप्ति होती है। और यह कैवल्य परम मोक्ष है, यद गत्वा न निवर्धन्ते तद्धाम परम मम। ये मुख्य पांचवी मुक्ति है। तो ये जो बंधन क्या वार्तिकार कहते हैं, अविद्या अष्टमयो मोक्षः साच बंध उदाहरिता। अविद्या अष्टमयो मोक्षः साच बंध उदाहरिता। अविद्या का नाम ही बंधन है। जब तक हमारे अंतःकरण के ऊपर अविद्या का शासन, तब तक आप बंधे हुए हैं। और अविद्या के अस्त्र का नाम है मोक्ष। अविद्या का स्वरूप क्या? तो कहते हैं कि अनित्य, अशुचि, अनात्म, दुख सु, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या का परिभाषा, अनित्य में नित्य बुद्धि हो जाना, अनात्मा में आत्मत्व हो जाना, दुख में सुख बुद्धि हो जाना, अशुचि में शुचि बुद्धि हो जाना, इसका नाम अविद्या है। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य, शुचि, सुखात्म ख्यातिर अविद्या। अविद्या की परिभाषा, ये शरीर हमारा अनित्य है। यदि आप ऐसा चिंतन करें तो अपने आप ध्यान लग जाता। यदि आप यह विचार करें ध्यान के पहले, भाई हमारा शरीर एक दिन शमशान में धू धू कर जल जाएगा और मैं साक्षी आत्मा देख रहा हूं, ऐसा होना भी है, पहले चिंतन कर लेंगे तो बैराग हो जाएगा कि हमारा जो शरीर है उस शमशान में धू धू कर जल रहा और मैं साक्षी आत्मा देख रहा हूं। तो शरीर आपका अनित्य, अनित्य मतलब एक दिन मिटने वाला है। संसार का नियम है जो बनेगा सो बिगड़ेगा। तो अनित्य में नित्यत्व बुद्धि अविद्या। शरीर अशुचि है, अपवित्र, जिसमें शुचित्व बुद्धि हो जाना, मैं बड़ा पवित्र हूं, ये भी अविद्या। शरीर अनात्मा है, आपका नहीं, पंचभूतों का है, उसमें आत्मत्व बुद्धि होना, यही मैं शरीर हूं। और चौथा है इस दुखालय में सुखालय की भावना कर लेना, यह अविद्या है। तो अविद्या अष्टमय का नाम मोक्ष है, विमुक्ति, और अविद्या में होने का नाम है बंधन। कोवास्ति घोरो नरक स्वदेह, तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति। सबसे बड़ा नरक क्या है, घोर नरक क्या है? स्वदेह, ये जो हमारा देह है, इससे बड़ा कोई नरक नहीं। आप डरते ना कि मरेंगे तो न जाने क्या गति होगी। जब भी किसी का जन्म होता है षड्भाव विकार से युक्त हो जाता है, अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। जन्मना का मतलब कि षड्भाव विकार से युक्त होना, तो संसार घोर नरक है। यदि आप घोर नरक को नरक समझ लें तो वैराग हो जाए। कतिक राजा था, बड़ा ही धर्मात्मा। एक दिन सेना सेनापति मंत्रीगणों के साथ जंगल में आखेट पर निकला। बहुत दूर जाने के बाद राजा एक मृग के पीछा किया, सेना सेनापति उससे अलग हो गए। जैसे अंधेरा होने लगा राजा ने विचार किया कि रात को कहीं रुकना चाहिए। एक जगह धुआं देखा, वहां पहुंच गया। वहां छोटी सी जरा सी झोपड़ी, झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी हुक्का पी रहा, गुडुर गुडुर हुक्का पी रहा। प्रार्थना किया, बहुत गिड़गिड़ाया, मैं फला देश का फला नाम का राजा एक रात आपके कुटिया में आश्रय चाहता हूं, प्रातः काल होती मैं चला जाऊंगा। उस बूढ़े आदमी ने कहा, राजन आपकी बात तो ठीक है, प्रार्थना सही है, परंतु मैं मजबूर, हमारे पास दूसरी कोई जगह नहीं, भयंकर जंगल है, जंगली जानवर रात को घूमते हैं। राजा ने कहा कि केवल एक रात की बात है, बहुत मैं भूखा प्यासा थका हूं, विश्राम की आवश्यकता। उस बूढ़े आदमी ने कहा कि ठीक है, पर आप जल्दी पधारना। राजा ने कहा, ऐसी जगह कौन रहना चाहेगा जहां मल मूत्र का ढेर, हड्डियां पड़ी हैं, बदबू आ रही है। वह तो रात बीतते ही प्रातः काल अपने आप चला जाऊंगा, अच्छी बात है। राजा को अंदर सुलाया, बेचारा बूढ़ा आदमी बाहर बैठकर अपना रात भर हुक्का पीते रहा, जागता रहा। प्रातः काल हुआ, राजा जाने का नाम नहीं, सोचा बहुत थका होगा। फिर शाम हो गया, सोचा बेचारा क्या पता राजा महाराजा है। दूसरा दिन हुआ, जगाया, बोले महाराज एक रात बीत गई, दूसरी रात भी आने वाली। जरा आंख खोला देखा, फिर चादर ढककर सो गया। जब तीसरा दिन हुआ तो बूढ़े आदमी को रहा नहीं गया, बोला महाराज आपने क्या वादा किया था, प्रातः काल होते ही राजधानी को पधारूंगा। तीन दिन तीन रात हो गए। राजा ने म्यान से तलवार निकाली, बोला क्या बोलता है, मैं राजा हमारी मर्जी, मैं जाऊं ना जाऊं तू कौन होता बोलने वाला। वही दशा हमारी है। हम लोग भी जब इस मां के गर्भ में आते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। गर्भ गीता में, श्रीमद भागवत महापुराण में बड़ी विस्तार से वर्णन है। सारे देवताओं का नाम लेके प्रार्थना करता है। यदा योन्यम प्रमुच्चे हम सांख योग मभ्यस्य, जैसे मैं गर्भ से बाहर निकलूंगा सांख्य का योग का अभ्यास करूंगा। यदा योन्यम प्रमुच्चे हम नारायणम शरणम प्रपद्ये, नारायण की शरण जाऊंगा, शंकर की शरण जाऊंगा, एक बार कृपा करके मुझे बाहर निकाल दो। बार बार प्रार्थना करता है। जैसे संसार में आया और आते ही जीवात्मा चीख चीख कर पूछता है, क्या हूं क्या हूं, कहा हूं कहा हूं। बच्चा जब रोता है तो इसका ट्विनिंग ध्वनि अलग होती है, बड़े कितने नहीं, बड़ा तो फूटे कांसे बर्तन के समान रोता है ना, पर बच्चा रोता है क्या हूं क्या हूं, मतलब मैं क्या हूं, और कहा हूं। इसका सही उत्तर तो मदरसा मां ने दिया। पता किया गया मदरसा ने, बच्चे को हिलोरा दे रही, खिला रही, बच्चे को क्या बोल रही, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। कितना साफ बताया, शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार के माया से रहित है। पर हम क्या कहते हैं, बेटा रोने मैं तुम्हारी मां, मां का मुख देखता फिर रोने लग जाता, फिर मामी आती पर बेटा मैं तुम्हारी मामी, रो मत मैं तुम्हारी मामी, तो चाची आएगी, ताई साहब, सब अपना अपना सिखाते हैं। अब वो सोचता है बेटा कि मैं जो है ना उसका भतीजा हूं कि बेटा हूं कि भाई हूं कि क्या हूं, उसको संशय हो जाता है। तो बालक तो बार बार चीख कर पूछता है कि बताओ मैं क्या हूं और कहां पर हूं। आप है मर्त लोक में, जहां पर कि आप आए वहां पर मरना ही यहां का धर्म है। पर आदमी मरना नहीं चाहता, ये भी आश्चर्य है। यहां का स्वाभाविक नियम है, जो आएगा उसे जरूर मर्त लोक से जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यदि आप अमर होना चाहते तो अमर का उपाय है त्यागिन अमितत्वम आनसु। यदि आपने जीते जी इष्णात्रय का त्याग कर दिया, पुत्रैषणा लोकैषणा वित्तैषणा, तो जीते जी आप परम आनंद को प्राप्त कर लेंगे। तो देखो सबसे बड़ा नरक तो हमारा शरीर है, वो झोपड़ी में कम से कम थोड़ी तो शुद्धि रही होगी, आकाश तो शरीर में देख लो, शरीर रूपी जो झोपड़ी है, कुटिया है, इसमें आप आए, भगवान से प्रार्थना किया, 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हम भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु एक बार हमें मनुष्य योनि दे दो, दोबारा मैं संसार में नहीं आऊंगा। जब आपने बार बार प्रार्थना किया तो भगवान ने मनुष्य योनि दिया। जैसे कि राजा ने प्रार्थना किया था कि जैसे रात जाएगी वैसे मैं अपने राजधानी को पधारूंगा, ऐसे आपने भी बाउंड भरा था ब्रह्मा जी के पास कि रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इतम विचिन्त्यति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। रात्रि जाएगी, सुंदर कमल का फूल खिलेगा और मैं उस कमल के फूल के पराग को रस को पान करूंगा, ऐसा भौंरा चिंतन कर रहा। इतने में एक गजराज आता है, मदोन मत गजराज आया, वो देखते देखते उस कमल दल को सबको पैरों तले कुचल दिया। बेचारे भंवरे का सपना वही चूर चूर हो गया। वही हालत हमारी, हम भी क्या सोचते हैं, ये इच्छा पूरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हमारी जो समस्या है, समस्या रूपी रात्रि दूर हो जाएगी तो बड़े मजे से हम आनंद लेंगे, सुख प्राप्त होगा। इतने में काल रूपी गजराज आता है और गोविंदा ही नमो नमः हो जाते। इसीलिए हमें भूलना नहीं चाहिए कि परमात्मा के प्रार्थना से बड़ा सुंदर देव दुर्लभ ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। नरतन चोला रतन अमोला, यह जो रतन बहुत ही अमूल्यवान है, इसका कोई मूल्य नहीं। ऐसे शरीर को पाने के बाद जैसे ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाए, संसार से अनासक्त होकर स्वरूप चिंतन में लग जाना चाहिए। तो कोवाचि घोरो नरक स्वदेह, इसलिए नरक कहा कि आपको ताकि शरीर से वैराग्य हो। जब आप बार बार अपने शरीर का, इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का विचार करते हैं तो आपको अपने शरीर से जरा वैराग्य हो जाता है और वैराग्य होते ही आप का विवेक जग जाता है। विवेक वैराग्य दो ही ऐसे सोपान हैं जो परमात्मा से मिलाते हैं। तृष्णाक्षय स्वर्ग पदम किमस्ति, स्वर्ग क्या है? स्वर्ग शब्द की परिभाषा है यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतं च तत्पदम स्वपदास्पदम। यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से मिश्रित नहीं है, न च ग्रस्तम अनंतरम, और बाद में भी दुख नहीं होना। मर्त लोक में तो वर्तमान में आपके पास सारे संसाधन मौजूद हैं, बिल्कुल दुख नहीं, पर क्या भरोसा नोटबंदी हो जाए दुख ही दुख। पर स्वर्ग में ऐसा नहीं, वर्तमान में दुख नहीं, आगे भी दुख नहीं होना। और तीसरा विशेषता है अभिलाषोपनीतंच, जैसा संकल्प करते वह संकल्प साकार हो जाता, जिसका नाम स्वर्ग है। तीन विशेषण है, यन्न दुखेन संभिन्नम, जो दुख से मिश्रित नहीं, न च ग्रस्तम अनंतरम, और भविष्य में भी दुख की गुंजाइश नहीं, और तीसरा है अभिलाषोपनीतंच, आपके संकल्प तत्काल साकार हो जाते। यहां तो आप सोचते हैं, फिर आप क्रिया करते हैं, लोगों का साथ लेते हैं, और उसमें किसी ने धोखा दे दिया तो समस्या, साथ लेकर फैक्ट्री कंपनी खोली, पूरा विश्वास किया और धोखा हो गया तो उल्टा दुख। पर स्वर्ग में ऐसा नहीं होता, इसी का नाम स्वर्ग है। तो स्वर्ग पद क्या है? तो कहते तृष्णाक्षय। यदि हमारे जीवन में तृष्णा का नाश हो, तृष्णा बोलते हैं कि आप किसी चीज को बहुत अधिक जो चाहते हैं उसका नाम तृष्णा। किसी ने कह दिया नद्या तीरे पंच फला निसंती, गंगा किनारे बहुत सुंदर पांच फल हैं, उन फलों को खाने से सारी बीमारियां दूर हो जाती है, बड़ा स्वादिष्ट है, बहुत मीठा है। आपने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, किसी को पता नहीं है, और दोपहर का समय सब सो रहे, चुपके से चलते हैं, वो पांच फलों को लेकर आएंगे, स्वयं खाएंगे, और अपने पांच जो परिवार पति पत्नी पुत्र पिता दादा पांचों को बांट कर सब खाकर अमर हो जाएंगे। गर्मी का दिन आप नंगे पांव बालू पर दौड़कर जाते, मां जब गए तो क्या देख रहे? कुछ भी नहीं, न वहां कोई पेड़, न पौधा, न फल। इसी का नाम तृष्णा। प्रत्येक प्राणी बचपन से लेकर जवानी में, जवानी से बुढ़ापे तक सुख को ढूंढ रहा। आपको यह यदि विश्वास दिला दिया जाए कि भाई पढ़ाई से सुख नहीं, नौकरी से सुख नहीं, धन में सुख नहीं, तो आप इसके पीछे नहीं भागेंगे। चूंकि हमें लोगों ने विश्वास दिला दिया है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बढ़िया नौकरी मिलेगी, अच्छा खासा धन मिलेगा, धन से बढ़िया मनचाहा बंगला बना लोगे, फिर बड़े मजे से विश्राम करेंगे, उससे सुख मिलेगा। ये जो धारणा है कि संसार के संसाधन से, विषय के संग्रह से सुख मिलता है, इसको बोलते हैं अध्यास। अध्यास की परिभाषा आपने कंठ कर ली होगी, बार बार सुनते हैं ना, अतस्मिन तद्बुद्धि। आनंद के अभाव वाले संसार में, जैसे सांप के अभाव वाले रज्जू में सांप की बुद्धि को अध्यास करते, तो शब्द क्या, अधि और आस दो है ना, अधि आस, अधि मतलब समीप में, आस मतलब बैठ गया। जो आपकी रस्सी है, रस्सी के ऊपर सांप का जो बैठना है ना, उसको अध्यास कहते। ऐसे ही संसार में आनंद का, सत्ता का, चेतन का भाव है। तो सच्चिदानंद का भाव वाले संसार में सच्चिदानंदत्व बुद्धि का नाम अध्यास, इसको बोलते शोभनाध्यास। इसी शोभनाध्यास के कारण तृष्णा होती। तृष्णा मतलब कि आप चाहते हैं कि हमें यह वस्तु प्राप्त हो जाएगी तो बड़ा आनंद आएगा, पर जब वस्तु प्राप्त हो जाती है तो दुगुना दुख होता है। इस सभी का अनुभव एक जैसा, अनुभव में अंतर नहीं। किसी चीज को प्राप्त करने के पहले बड़ा मन में सुख होता है, उसमें सुख नहीं कल्पना में सुख होता है कि चीज मिल जाएगी, फिर उसका ऐसा उपयोग करेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा। आप अपने कल्पनाओं में सुख का अनुभव करते। जिस प्रकार श्वान सूखी हड्डी को चबाता है तो उसके मसूड़े से रक्त की धारा बहती है, पर क्या सोचता है कि हड्डी में वो खून है, हड्डी में खून थोड़े, वो तो उसके मुख के मसूड़े से खून निकला, उसको चाटता है, बड़ा खुश होता है कि ये बड़ा आनंद है। ऐसे ही संसार में आनंद का भाव, सुख का भाव प्राणादिकाल से अध्यास बन गया। भाई संसार के संसाधन में सुख है, आनंद है, इससे सुख की प्राप्ति होती है, इसी का नाम तृष्णा है। सबसे पहले अध्यास हुआ, अध्यास के बाद तृष्णा हुई, और तृष्णा को पूरी करने के लिए दिन रात आप उधर भागते रहते हैं। स्वयं जो आपके अंदर आत्मा बैठी है, आपके अंदर ही परम आनंद है, उसका प्रतिबिंब विषय में हो रहा। इस प्रकार एक किसान था, उसके खेत में बहुत सारे हीरे पड़े हुए थे। किसान ने उनको पत्थर समझकर पक्षियों को उड़ाने में फेंक दिया। सौभाग्य से एक जौहरी आया, अब एक हीरा बचा था, कहा भाई ये तो बड़ा अमूल्य है, मुझे दे दे, तुझे मन चाह वस्तु दूंगा। बोला कितना? बोले तू लाख मांग, करोड़, अरब मांग, सब तेरे लिए है। किसान ने सोचा, अरे ऐसे पत्थर तो हमारे पास बहुत थे, सारे पत्थरों को तो हमने पक्षियों को उड़ाने में फेंक दिया। अब उस किसान को समझ में आ गए कि इसकी महिमा क्या। ऐसे ही सदगुरु जब जौहरी के समान कहते हैं कि भाई देख, यह जो मनुष्य का शरीर है बड़ा अमूल्य है, तेरे हृदय में अंतरात्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति, जो आनंद स्वरूप है, उसी को उपलब्ध करने के बाद परम आनंद और तृष्णा क्षय होता है। पर अज्ञान से जीवात्मा पहले शोभनाध्यास किया, शोभनाध्यास के बाद में तृष्णा हुई, यह वस्तु हमें मिल जाए, और जब वस्तु नहीं मिलती है तो क्रोध होता है। कामना के विघात से जब कामना पर बाधा होता है तो क्रोध आता, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। पर आपको प्रेमपुरी सत्संग भवन में दिव्य बुद्धि ज्ञान की प्राप्ति होती। देखो हमारे जीवन में बुद्धि तत्व से बड़ी कोई चीज नहीं। यदि आपको सद्बुद्धि मिल गई तो सब कुछ मिल गया। असद्बुद्धि कहां मिलती है? सत्संग में। इसी को स्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधान। तो सत्संग से, स्वाध्याय से, हमें सुमति मिलती, सनमति मिल जाता है, और सनमति मिल गया तो सारी संपत्तियां आ जाती हैं, और कुमति है तो विपत्ति निधाना। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।